कुछ सोचा या पढ़ा। पिछली नशिस्त में हमने इमाम जौज़ी के हालात ज़िंदगी पढ़े थे और उनमें से उनकी शख्सियत के कुछ जो रुख थे उनको देखा था। कोई बात पूरा हफ़्ता जहन में आई उनकी? अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ लें तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने पूरा हफ़्ता ही डिफरेंट जगहों पे क्लासेस में जाती आती रहती हूँ, तो शायद ही कोई दिन खाली हो कि मैंने कोई बात इब्ने जौज़ी की शेयर ना की हो, इस सोच के साथ कि वो क्या थे और आज हम क्या। जी आप कुछ कहें।
मैंने उस अगर आगे थोड़ा सा पढ़ा था इनका, तो मुझे बस एक चीज़ रहेगी अभी जो तक मेरा पॉइंट है कि टाइम वक्त
जी
कौन
आज
सा
हम वही पढ़ने लगे हैं। आप देखिए कि ये लोगों की जो एक कॉमन खूबी थी ना, वो ये थी कि ये वक्त की बड़ी कदर करते थे। किताब में अगर आप तरतीब के साथ खोल के देख लेते हैं, जिनके पास बुक है नहीं है तो बल्कि ज़्यादा अच्छा है, फोकस करेंगे लिखेंगे कि हमने पिछले सेशन में इनकी लाइफ हिस्ट्री इनकी मौत तक देख ली थी। फिर इसके बाद अगर अगला टॉपिक आप बुक में देखें पेज 19 के ऊपर, तो ये इनके उस्तादों के बारे में, यानी इनको कौन कौन से उस्ताद मिले, तो इसमें से चंद छोटे दो चार जुमले बुलेट की तरह बता के तो आगे चलती हूँ और आप ख़ुद बाद में इस हिस्से को पढ़िएगा। आप देखिए कि जब आप किसी उस्ताद के साथ किताब पढ़ते हैं ना, तो ये किताब पढ़ने का तरीका भी सीख रहे होते हैं। एक ऐसी अलिफ से ये तक सारा पढ़ छोड़ा, ए टू जी पढ़ा, अंदर कोई नहीं गया। नहीं, कुछ चीज़ें अहमियत के हामिल होती हैं, उसको ज़्यादा गौर से पढ़ें, टाइम दें, उस पर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें। कुछ के सिर्फ पॉइंट्स भी काफ़ी होते हैं। तो इनके उस्तादों के बारे में चंद जुमले नोट कर लीजिए। ख़ुद अपने उस्तादों के बारे में जो किताब लिखते हैं उसमें 89 उस्तादों का तذکرہ करते हैं, यानी इनके एक कम 90 उस्तादों का ज़िक्र एक किताब में, और यकीनन इसके अलावा और भी होंगे। हमारे कितने उस्ताद हैं और हम कितनों के तकाजे पूरे कर पाते हैं, और कितनों के बारे में हमारे दिल में ये आजजी और मोहब्बत आती है कि ये नेमत है एक हमारे लिए। हम तो उस्तादों को, मैं सोचती हूँ कि, यानी आपकी बात नहीं कर रही, फीस ज़माना दुनिया की बात कर रही हूँ, सोचते हैं ये फालतू है, इनको ज़रूरत ही और क्या, इन्होंने करना और क्या। जैसे मिस्त्री अपने काम पर लगा हुआ, मज़दूर अपने काम पर लगा है, कुक लगा, इन्होंने तो पढ़ाना ही है। रियली बात लोग यही सोचते हैं, मुझसे कोई नहीं कहता, ज़ाहरी इज़्ज़त भी बड़ी करता है, रिस्पेक्ट करता है, लेकिन आपको अगर किसी की ज़रूरत ही नहीं, उसकी अहमियत ही नहीं पता, तो फिर आपको खैर उतनी ही मिलनी है जितनी आपने लेनी है। इन्होंने पूरी किताब लिखी और कहते हैं कि इस किताब को पढ़ के अंदाज़ा होता है कि अपने दौर के बेहतरीन और उलमाए आमिलीन का इंतखाब करते थे, यानी जो सबसे अच्छे थे। हम कहते हैं ढीला ढीला उस्ताद ले लो ताकि ख़ुद भी ढीले रहें, पूछे तो ना ना कितना मज़ा ढीले ढाले रहे। जब हम दूसरों को बताने वाले ढीले होंगे तो मुझे बताइए कि दूसरों को क्या देंगे। मैं तो बहुत खौफ ज़दा हो जाती हूँ उस टेबल को देखकर जो खुद ढीला है, उसके ऊपर कौन रहेगा कुछ। आप उस चूल्हे पे हंडिया रखेंगे जो चूल्हा खुद ही कांप रहा हो? नहीं रख सकते। तो याद रखिए, जो दीन की तरफ बुला रहे होते हैं ना, वो उस्ताद कह लें आप उनका कोई भी नाम रख लें, वो बहुत अहम होते हैं। बेहतरीन का इंतखाब कीजिए। और मैंने अपने ऑब्ज़रवेशन कह लीजिए, तजर्बे और मुशाहदे से देख लीजिए, दुनिया भर में जहाँ भी क्लासें शुरू की हैं, वही क्लास पनपी, वही फली और वही फूली जिसमें हमारे अंसारुल्ला एडमिन वो जमे रहे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, उन्होंने अपनी कमिटमेंट नहीं छोड़नी, वो हालात के गुलाम नहीं बने, वो मजबूरियों की नज़र नहीं हुए, वो छोटी छोटी बात को उज़र बना के बैठेंगे। तो बड़े तो खुद स्टूडेंट्स तो बच्चे होते हैं, वो कहेंगे हमने अपने उस्तादों को भी देखा, हमने अपने इंचार्जेस को भी देखा, हमने एडमिन्स को देखा है, वो भी कभी आते थे कभी जाते थे, कभी उठ जाते थे कभी ये करते थे, मियार ही बदल दिया। देखिए ना, तराजू है, आपने उसमें 10 किलो का बाट रखा, तो 10 किलो में 10 किलो ही डलेगा तो फिर ही पूरा होगा। तो आप 10 किलो के बाट 10 किलो लिखें लेकिन बाट 2 किलो का हो तो मियार ही छोटा हो गया ना, बर्तन ही छोटा है। तो इसलिए हमेशा इसमें अपने लिए नोट करें, बेहतरीन सख्त मुश्किल उस्ताद को चूज़ करें, क्योंकि वो आपको ट्रिम करेगा और ख़ुद भी ऐसे ही बने। ऐसा कोऑर्डिनेटर मैं देख रही होती हूँ जान पे बनी होती है, एक फिगर मिस होता है, किसी की रोल कॉल नहीं, किसी का एक टेस्ट नहीं, वो ऐसे उसके पीछे फिर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के, जी ये आपकी कमी है, ये ठीक है, मैं देखती हूँ इनको, पता नहीं ये भी पता है कि नहीं, घर में आटा है ख़त्म हुआ है कि नहीं, चावल हैं कि नहीं, ये इनके स्टूडेंट्स के नंबरों पर, इनकी रोल कॉलों पर, इनके आने पर, इनके जाने पर परेशान है, इनको कहाँ याद रहना है कि घर में क्या मसला चल रहा है। और यही चीज़ें याद रखे फिर हमें पुख्ता करती हैं। तो इसमें हर एक अपने लिए अमल ले, मैं भी लूँ, सबसे पहले तो मुझे ही लेना चाहिए कि इस काम की अहमियत को समझे, बेहतरीन बने, جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر اتنا شرح صدر عقل استعمال کرے بندہ. میں سوچتی ہوں دین کی طرف بلانے والا سب سے عقل مند ہوتا ہے, سب سے زیادہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیا عمل کس وقت کس طرح کا ہوگا. پھر اسی طرح سے انہوں نے حدیث کا علم بھی لیا, اور کہتے ہیں حدیث کے معاملے میں صاحب فہم کو ترجیح دیتے تھے. ایک ہوتا حدیث پڑھی انما الاعمال بالنیات, حدیث ہے, اب اس کا فہم کیا اپنے معاملوں میں پرکھیے, نیت کہاں سیدھی ہے کہاں ٹیڑھی ہے. اس حدیث کے اندر سے جو ایک نقطہ اخذ کرنے والا, یہ وہ ساتھ چوستے کرتے تھے جو فہم اور ادراک کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو. پھر اسی طرح سے آگے اگر آپ دیکھیں تو اگلے پیج پہ استادوں کے نام ہے کچھ, آپ کے لیے تو ایسے ہی ہوگا جیسے شاید کوئی گمنام ہستی ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے, آپ نے پیج 20 کے اساتذہ کے اسماء گرامی کا پیج 1, پھر اگلا پیج ہے مشہور تلامذہ. تلامذہ کون ہوتے ہیں بتائیے؟ شاگرد, تلمیذ کی جمع. ابن جوزی نے جیسے اس اساتذہ کا انتخاب کیا اعلیٰ طرح کا, اس طرح انہوں نے اپنے لیے جو شاگرد چوز کیے ان کو بھی بہت خیر اچھا چوز کیا. یاد رکھیے دین کے کام میں کوالٹی آتی ہی اس بات سے ہے کہ آپ چوز کس کو کرتے ہیں. مجھے کل کوئی سنا رہا تھا, کہیں کی بھی بات ہوگی, کہنے لگیں کہ ہم کلاس شروع کرتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں, لوگ آئیں نہ آئیں. کسی مسجد میں پوچھا انہوں نے کہ آپ ہمیں جگہ چاہیے, گھروں میں عورتیں کمفرٹیبل نہیں ہوتی تو آپ آ جائیں. تو ہمیں تو انہوں نے مسلک کا نام دے کر پیچھے کر دیا. کہتی کہ ایک ہفتہ گزرا تو مجھے اسی مسجد کی کسی اپنے ساتھی کی طرف سے انویٹیشن آئی کہ مسجد والے بھی کلاس شروع کر رہے ہیں. مجھے جو جملہ اس اسٹوڈنٹ کا کل سنا اور میں واقعی حیران رہ گئی, کہنے کی استاذہ آپ کہتی ہیں جگہ مسجدوں میں ڈھونڈیں, جہاں ہم جاتے ہیں وہاں جگہ نہیں ملتی, پر یہ میں آپ کو بتاؤں وہاں کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, چلو کلاسیں تو شروع ہوں. کہتی نہیں یہ خوشی کی بات نہیں, کیوں, اپنا تجربہ سنا رہی تھی ایک دو سال پیچھے کا کہ کوئی کلاس ہم نے شروع کرنی تھی اور اس میں مسجد والوں سے پوچھا, انہوں نے اپنی مجبوریاں بتا دی جو بھی ہوں گی, لیکن اندر وجہ یہ تھی کہ وہ آپ ہمیں دینا نہیں چاہ رہے. انہوں نے دو تین کچھ دن گزرے تو ان کو ایک میسیج کسی جگہ سے آیا کہ اس مسجد میں بھی جب خواتین کی کلاسیں شروع ہو رہی ہیں, کیونکہ پھر پبلک تنگ کرتی ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو کہاں بھیجو, کہتے ہیں نہیں جی ہم بھی کرتے ہیں. کہتی خیر میں نے سوچا دین ہی سیکھنا, یہ تو قریب ہے, چلے دور نہیں جاتی تو میں جاتی ہوں. اور وہ کہتی میں وہاں گئی, نیت بہت اچھی ہوگی, ہم کسی کو کریٹیسائز نہیں کرتے, بٹ وہ سسٹر جو وہاں ایز اے ٹیچر بیٹھی تھی کہنے لگی کہ مجھے تو کوئی بات ہی نہیں اس میں سمجھ آئی نا, یعنی یہ متاثر نہیں ہوئی یا ان کو فائدہ نہیں ہوا. اور ان کی وہ کہہ رہی بالکل, وہ اصل میں اس مسجد کے کسی بردر کی بیوی تھی, بردر کہنے لگے اگر ان کے ہسبینڈ کے کلاس شروع کرتے تو واقعی وہ بڑی اچھی ہوتی, کیونکہ وہ پڑھنے پڑھانے میں کافی اچھے ہیں, لیکن ان کی مسز مجھے امپریس نہیں کر سکی, میرا اگلی دفعہ جانے کو دل نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ کہتی دو تین ویک وہ کلاس چلی, اب کوئی نہیں. وہ صرف ایک ہماری اجازت پوچھنے کا, اجازت طلب کرنے کا ریئیکشن تھا, کوشش کی, چونکہ بندہ ہی نہیں تھا ٹھیک پاس, تیاری نہیں تھی, انتظام نہیں تھا, کوئی کورس یا کلاسیں ایسے تھوڑی شروع ہوتی ہیں, اس کے لیے خون جلانا پڑتا. کہتی ختم ہو گئی. تو کیا اچھا تھا اگر وہ وہاں دین کی کلاس کچھ ان سسٹرز کو کرنے دیں جن کے پاس کچھ تجربہ کچھ مشاہدہ کچھ کچھ ہے, تو فائدہ ہی ہوتا نا. لیکن اس چیز نے مار دیا. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے سنڈے کو آنا ہے کہیں بھی کلاس میں, آپ کہتے ہیں ادھر کے رول بڑے سخت ہیں, یہ بہت ٹائم پہ بلاتے ہیں, یہ جانے ہی نہیں دیتے بیچ میں, یہ فون نہیں کھولنے دیتے, یہ بیچ میں بچوں کو نہیں کھیلنے پینے دیتے, اور یہ سبق بھی سنتے ہیں, تو کیا مشکل میں اپنی جان کو کیوں ڈالوں, پہلے ہی پورا ہفتہ بڑی مشکلیں ہیں. تو ہم جہاں کوئی ساتھ ہی کوئی گلی کوچے میں دیکھتے ہیں کوئی ہے, آئیے جی اور بیٹھیے جی اور پڑھیے جی اور سنیے جی, جب دل چاہے وہاں چلے جاتے ہیں, وقت ہی پورا ہونا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کمی تو خانہ پوری تو ہو گئی, کلاس کی کلاس, دل کا گلٹ بھی دور ہو گیا, ملا کینڈ پہ. اور آپ کو بھی تبھی ملے گا جب آپ سارے رول سیکھیں گے, یہ بھی یاد رکھیں. یہ آپ لوگوں کو تو بھی خود بھی نہیں اندازہ کہ اللہ نے آپ سے کام کیا لینا ہے, اور اگر ڈھیلم ڈھالے آدھے کی آدھے تیتر آدھے بٹے, اللہ کوئی نہیں اپنے دین کا کام لیتا. تو یہ ابن جوزی کی میں نے پرسنالٹی کو پڑھا ہے, یہ جب بھی چوز کرتے تھے نا تو بہترین چیز, مشکل استاد لیتے تھے, اور شاگردوں میں سے بھی جو شاگرد ان کے تھے کہتے کہ ان کے شاگرد وقت کے امام بنے. استاد سخت تھا نا, جس کو ایک اچھے استاد کے ہاتھ لگ جاتے ہیں نا وہ پھر کچھ نہ کچھ کرتا ہے. और कहते हैं कि इनके लिखने पढ़ने में, इनके खलास, इनकी लिलाहियत में, इनके शागिर्द इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते गए। और आगे देखिए कि पूरी लिस्ट है इनके शागिर्दों की, और कौन क्या क्या उलूम दिए लिए। इनकी किताबों के नाम आप पढ़िएगा घर में जाकर, तो आपको इंशाल्लाह शौक़ पैदा होगा कि हमने भी ऐसे ही शागिर्द बनना है। फिर इसके बाद पेज 22 पे इनकी कुछ किताबों का तस्करा, तसानीफ़ और तालीफ़। तसानीफ़ और तालीफ़ में क्या फ़र्क है? एक होती है तसनीफ़ और एक होती है तालीफ़। तसनीफ़ का लफ्ज़ सनफ़ा से है, खुद लिखना, और तालीफ़ कहती है दूसरी चीज़ों को जोड़ना, अल्लाफ़ा युअल्लिफ़ु, यानी मुख्तलिफ हदीसों को जमा किया। जैसे अब आजकल देखिए तफ़हीम सुन्ना सीरीज़ हम पढ़ते हैं, ये क्या है? तालीफ़ है। उस राइटर ने मुख्तलिफ हदीसें जमा की हैं किताबुल हज के नाम पे, किताबुल ज़कात पे नाम पे। आप देखते हैं उस किताब में उनका अपना बहुत कम होता है, बात समझ गए? तो हदीसों के मजमूए को जमा करना, कुछ चीज़ों को करना। तो क्या कह गए, इस पर एक खूबसूरत जुमला लिखा हुआ है कि वो जिस्म और रूह के एतबार से तो हमसे जुदा हो गए, मगर इनकी यादें, इनकी अजीम मेहनत के समरात तारीख के सफ़ात पर जिंदा और जावेद हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा, जोहला यानी जाहिल, इग्नोरेंट, जिनको इल्म की कोई कदर ही नहीं, जिनका सिर्फ़ एक ही काम है, हम खाना पीना बतन फ़र्ज, या जिनको सिर्फ़ दुनियादारी का ही काम है, कहते हैं कि जोहला ज़िंदा होकर भी मुर्दे हैं और उलमा मरने के बाद भी ज़िंदा हैं। आज भी लोग इनकी किताबें देखकर, इनकी तसनीफ को देखकर हैरान हैं। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह का नाम आपने सुना होगा, अपनी एक किताब में अल अजूबतुल मिस्रिया में कहते हैं, इनका नाम लेकर कहते हैं कि मुफ्ती और साहिब तसानीफ़ कसीरा थे, कई फ़नून में आपकी तसानीफ़ व तालीफ़ हैं, मैंने इनको गिना तो हज़ार से ज़्यादा थी। यानी इब्ने जोज़ी की लिखी हुई किताबों को इमाम इब्ने तैमिया जिस नंबर तक गिन सके वो 1000 थी। हाफिज़ ज़ाहबी हैं, इमाम हाफिज़ ज़ाहबी कहते हैं, मेरे इल्म के मुताबिक इब्ने जोज़ी के बराबर किसी आलिम ने किताबें नहीं छोड़ी, यानी लिखा इतना। और अलबिदाया नहाया किसने लिखी है आपको पता? इमाम इब्ने कसीर ने। वो इनके बारे में कहते हैं कि वो अपने उलूम में मुनफरिद थे, यानी यूनिक थे, उन जैसा कुछ जगह मिला नहीं। कई उलूम पर इनको दस्तरस थी, मसलन इसके एक्सपर्ट थे। इनकी तसानीफ 300 से जायद हैं, खुद अपने हाथ से 200 से जायद जिल्दें लिखी। हर इल्म में वसी महारत, बल्कि महारत तामा, तामा किसको कहते हैं? तमाम, मुकम्मल, कंप्लीट महारत तामा रखते थे, यानी इल्म तफसीर, हदीस, फ़िक्र, तारीख, हिसाब, इल्म नजूम, तेप, लुगत, सरफ व नहव। इन तमाम उलूम में इनकी कई तसानीफ़ हैं जो यहाँ हम बयान नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि ये तारीफ़ें ऐसे तो नहीं होती ना। फिर आगे आप पढ़ेंगे तो इनकी आपको कुछ किताबें मिलेंगी। जो चीज़ इस वक्त पढ़ने के काबिल आपके मेरे लिए है वो है 23 पेज पे इब्ने जोज़ी के यहाँ वक्त की कदरों कीमत। और इसको क्या सोच के पढ़ना है? क्या हम भी इसको वक्त, इस वक्त को ऐसे ही लेते हैं? मैं पढ़ती हूँ, मेरे साथ साथ नज़र दौड़ाते रहिए। इनकी सीरत के किसी गोशे को भी मुलाहिज़ा कीजिए कि इनके यहाँ वक्त की क्या अहमियत थी, वक्त को किस तरह बचाते, मेहमानों की आमद या बेकारों बेमशगल अफराद के आने के वक्त आपका तरीक़ेकार क्या रहा। अपनी मरूफ किताब सईदुल खातिर की जिल्द वल और सफ़ा 46 और 201 और जिल्द दोम के सफ़ा 318 और 19 और तीसरी जिल्द के सफ़ा 616 में फरमाते हैं, यानी अब इनके कोट्स हैं जो उस किताब में से लिए गए हैं, इंसान को चाहिए कि अपने वक्त की कदर व कीमत को पहचाने, एक लम्हे को भी बेकार ज़ाया ना करे, बल्कि हर लहजे को ज़रिया सवाब बनाए, अलबत्ता इसमें अपनी नीयत को फसाद से बचाए और हर कौल व अमल में नीयत को साफ और खालिस रखे। जैसा कि हदीस में आता है कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। सलफ सालहीन यानी पुराने लोग, हमारे उलमाए कराम, हर लहजे की हिफाजत करते, फजूल गोई से बचाते। चुनाचे मशहूर ताबई आमिर बिन अब्द कैस, जो आबिद और जाहिद थे, उनसे किसी ने कहा मुझसे बात कीजिए, तो फरमाया सूरज को रोको। क्या मतलब? कि तुमसे बात करने में जो मेरा वक्त लग जाएगा वो सूरज से को रुक जाए ताकि मैं उस वक्त को बाद में इस्तेमाल कर सकूँ। ये लिखते हैं कि मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि वक्त को अजीब अंदाज से मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि वक्त को अजीब अंदाज से बर्बाद करते हैं। रात अगर लंबी हो जाए तो फजूल गोई या बेफायदा किस्से, कहानियों और नावलों को पढ़ने में वक्त सर्व करते हैं। रात को ता हो यानी रात के अंदर अगर अंधेरा हो तो रात को नींद में और दिन को तफरी गाहों और बाजारों में ज़ाया करते हैं। वक्त ज़ाया करने वालों की मिसाल इन लोगों की सी है जो कश्ती में सवार महवे गुफ्तगू हों और कश्ती इनको इन अनजान मुकाम की तरफ ले जा रही है। यानी रास्ता भूल के कश्ती कहीं भी पहुंच गई, वो बातें करते रहे, उन्होंने नोट ही नहीं किया किधर जा रही है या अपने मकसद से बेखबर है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वक्त की कदर कीमत और अपने वजूद के मकसद का इदराक रखते हैं। उम्र बड़ा कीमती सरमाया है, हाथ से निकलने से पहले इससे काम लो और इसको कीमती बनाओ। सच बताएं आज हमारा क्या हाल है। अब देखिए कितनी लंबी रातें आ रही हैं आगे, कब मग़रिब होती है और उसके बाद रात ढलती है। आगे वाले अगले महीने में आप खुद ही जानते हैं, 3:30 बजे मग़रिब हो जाएगी, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे ईशा लोग पढ़ने चले गए। लोग कब सोते हैं? 10 बजे। मैं सोचती हूँ ईशा के बाद भी 6-7 घंटे सोते हैं और मुझे अब ज़्यादा अंदाज़ा कहाँ से हो रहा है लोगों के सोने जागने का मैसेजेस से। ऐसी नज़र पड़ती है अगले दिन, मैं कहती हूँ ये मैसेज कब है। रात को मैसेज देखो तो 12 बजे, 1 बजे। सिस्टर्स इवन दीन की खिदमत करने वाले लोग भी 12-12, 1 बजे तक जाग रहे हैं। कैसे ज़िंदगी में बरकत आएगी? और आप सुबह में ज़रा कहिए चलें, कहीं चलते हैं? नहीं, ये तो सोने का दिन है, ये तो आराम का दिन है, ये तो बच्चे सो रहे हैं, उठेंगे तो नाश्ता देना है, ये करना है। यानी आज हमारा मामूल बदल गया है। बेकारों की सोहबत से अल्लाह की बना चाहता हूँ। अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ कि मेरे साथ भी आम वक्त ज़ाया करने वालों की तरह मामला करने की कोशिश करते हैं और इसको ज़ियारत या ख़िदमत का नाम देते हैं। बात समझ रहे? यानी आलिम थे ना, तो लोग आते थे कहते थे आपकी ज़ियारत के लिए आए या आपकी ख़िदमत करना चाहते हैं और पास बैठने का मुतालबा करते हैं और बैठकर बेमकसद बातों में लग जाते हैं, दरमियान में गीबत भी शुरू हो जाती है। ये हमारे ज़माने के अक्सर लोगों का तरीक़ा है, खसूसन आम खुशियों और ईदों के मौके पर। बात सच है? यानी एक दीनदार का वक्त किस तरह लोग ले लेते हैं। आते किसी मोहब्बत में, नीयत भी अच्छी होती होगी, पर उसको एहसास ही नहीं हो रहा होता कि इसका वक्त किस तरह और लगना था, लेकिन अब इसको हमने तो सता दिया। आप देखें ना कि मुरव्वत में वो क्या कहे, जाओ उठ जाओ या ये गीबत ना करो, मेहमान की एक इज्जत होती है। तो ये कहते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं थी कि लोग मेरा इस तरह का बेकार वक्त लें। अब इसमें ये नहीं मतलब कि बिल्कुल ना कोई उससे बात करे, यानी यहाँ वो क्या लिख रहे हैं, बेमकसद बातों में। इल्मी बातें हो रही हैं, बैठिए बात कीजिए, कोई प्लानिंग हो रही है बात कीजिए, कोई मशवरा करना है कीजिए, कोई दुख दर्द करना है कीजिए, लेकिन बेतुक्की हंकनी ये बिल्कुल एक मोमिन को तो बिल्कुल भी ये सूट नहीं करता। एक दूसरे के पास जाते हैं सिर्फ मुबारकबाद देने और सलाम करने पर इक्तफा नहीं करते। सोचें, हाँ आप जब जाते हैं किसी को हज की मुबारक देने या आप किसी की मंगनी शादी की मुबारक, कहते हैं इतना ही नहीं करते बल्कि उसके साथ ऐसी गुफ्तगू भी छेड़ देते हैं जिससे वक्त बर्बाद होता है। हमारे यहाँ बिसोक कहते हैं आप लोग उसको, बिसोक पे जाके क्या करते हैं? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई किसी के घर चला जाए वीकेंड पे और 2 घंटे से पहले आए, बल्कि खाने का वक्त है तो खाना, चाय, फिर इलायची, सुपारी, पान, मीठा, चले अब रात का भी खा के ही जाइए। सिर्फ एक मेहमान कम अज़ कई दफ़ा हमारा पूरा वीकेंड ले जाता है। और अगर कोई ज़रा सा नपातुला बात करे, कहते हैं इनमें मोहब्बत ही नहीं, शिरीनी नहीं, हम गए थे जिनको खुशी नहीं हुई, हमने बुलाया याद ही नहीं है, आए भी थे तो कहा था बता दें कब आऊँ जो बिल्कुल आखिरी बीच का वक्त हो उसमें आ जाऊँ। देखें जी, इनको तो कहा था 6 बजे तो आए 8 बजे, भाई 6 से 8 के बीच में आपने बेकार बातें करनी है, खाना आपने खिलाना है, 8 बजे खाना देना है, तो 6 से 8 आकर खाने का इंतज़ार क्यों करें? याद रखिए ये इज्तमाही प्रॉब्लम्स आज हमारी माशरे के। जब मैंने देखा कि वक्त कीमती तरीन सरमाया, इसको नेकी में सर्फ करना फ़र्ज है, तो इसको ज़ाया करने को नागवार समझा और लोगों के मस्कूरा तरीके से पहलू तही की, यानी जो जिक्र हो चुके ऊपर तरीका, मैं ऐसा नहीं करता था बल्कि इनके साथ बैन बैन रहा। बैन बैन क्या होता है? बीच में, अब देखिए आप बुक पढ़ रहे हैं ना, आपको उर्दू आती है, लेकिन अब मुझे पता है कि इसको पढ़ने में कई गलतियाँ करेंगे, हो सकता है किसी को बैन बैन का मतलब ही ना, कोई बीन बीन कह दे, बैन बैन कह दे, तो जब पढ़ें हाथ में कच्ची पेंसिल लेकर मेरे पढ़ने के साथ आप अरब लगा लिया करें जिस लफ्ज़ पे आपको डाउट है। और स्टूडेंट के हाथ में पेंसिल अच्छी लगती है, सीने पे हाथ बांध के अगर वो बैठा हो तो वो स्टूडेंट नहीं लगता। कागज़, कलम और निगाहें किताब के ऊपर होनी चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं क्योंकि मुकम्मल इनकता भी मुमकिन नहीं। इनकता क्या है? मुनकते, कट ऑफ, कतः ताल्लुक की बायकॉट करना, जी हम शादियों में नहीं जाएंगे, हम दावतों में नहीं जाएंगे, हम फैमिली गैदरिंग्स में नहीं जाएंगे, कहते ये भी मुमकिन नहीं। तो मुकम्मल इनका साथ देना भी गलती से खाली ना था, तो मुलाकातों को कम से कम करने की कोशिश की। अगर मुलाकात नागुज़ीर होती, नागुज़ीर क्या लफ्ज़ है, कई लोग इसको नागुज़ीद पढ़ते हैं, बताए आपको ना, मैंने नहीं, गुज़ीर कहते हैं भागना, फारसी का मुहावरा ये, नागुज़ीर जिससे आप भाग नहीं सकते, मुराद है कि ये लाजमी है। तो बहसो कलाम में कमी कोई कोश की बहसो कलाम में कमी की कोशिश करके वक्त बचाने की तदबीर की, फिर ऐसा काम ढूंढ निकाला जो बातचीत के दरमियान भी चलता रहा। देखें ज़रा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जब लोगों के बुलाने पे लंबी लंबी महफिलों में मैं नहीं बैठ सकता था और पूरा छोड़ नहीं सकता था, तो पहली बात तो मैं ऐसी बहस ही ना छेड़ता जिससे बात लंबी हो जाए। आप देखें ना किलो काल कैसे होती है, एक बात जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ पहुँचने तक पता नहीं वो बात का बतंगड़ बन चुका होता, ऐसी ओल फोल, कभी सियासतदान की बातें, कभी बावड़ा की बातें, कभी बिजली नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी ठंड बड़ी आ गई, कभी ये मौसम ऐसा हो गया, किसी अखबार की खबर को डिस्कस शुरू हो गया, आपको एंड ऑफ द डे क्या मिला? तो क्या करते थे, कहते थे बात ही नहीं करता था। और अगर किसी की बात सुन रहा हो तो मैं क्या करता, कोई साथ काम ले जाता था। ये बड़ा अहम नुक्ता है आपके मेरे लिए भी टाइम मैनेजमेंट के सिलसिले में। क्या करता, मसलन ये निकाला कि किसी की आमद के वक्त कागज़ काट कर लिखने के लिए दुरुस्त करना और कलम तराश कर सही करना, और वो काम जो बातचीत करने के दरमियान भी अंजाम दिया जा सकता करने लगा। कभी ऐसा भी होता है ना, पहले दौर में आप देखिए लोग सब्ज़ी बना रहे हैं, साथ लहसुन का टोकरा पकड़ा, चले ख़वातीन ने तो यही करना था। अब आप देखिए किसी के साथ बैठे, जैसे मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि अक्सर चीज़ें जब ऑनलाइन से करनी होती हैं तो मैं अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि इस वक्त सिर्फ मैंने सुनना है और मैंने पूरी तवज्जो से सुनना है, तो अब मेरे हाथ तो खाली है ना, तो मैं साथ इस्त्री कर सकती हूँ, कोई हर्ज नहीं, मेरे पास फ़ोन रखा है मैं इस्त्री कर लूँ। चले साथ अगर मैंने कोई ऐसा काम करना है कि जिसमें सिर्फ मेरे हाथ लगते हैं, कोई सॉर्ट आउट कर लिए, कोई पेपर सॉर्ट कर लिए, कोई बुक डाउनलोड कर ली, तो मैं ख़ुद भी इस तरह ही करती हूँ, क्योंकि अगर आप एक पूरा काम करें फिर दूसरा लें तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम तो बचेगा भी नहीं। तो ये करना आप भी शुरू करें, आप जब दावतों में जाएँ तो साथ ले जाएँ कोई काम जो हाथ से करने वाला हो, ताकि अगले को भी एहसास हो कि आप वक्त को ज़ाया नहीं करें। और ऐस वो काम करता जो बातचीत के दरमियान भी अंजाम दिया जा सकता, जिसके लिए फ़िक्र हुज़ूर क़ल्ब की ज़रूरत नहीं होती। आप ख़ुद जानते हैं ऐसे बहुत सारे काम हैं जो जहन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी हो जाते हैं। मैंने मुशाहिदा किया है कि अक्सर लोग मकसद ज़िंदगी ही से गाफिल हैं, ज़िंदगी का मतलब ही नहीं समझते। इनमें से बाज़ ऐसे लोग हैं, इनमें से बाज़ ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने माली फरावानी से नवाजा है, यानी अल्लाह सुबहान तआला ने उनको दुनिया की दौलत दी है, कमाई की इनको ज़रूरत नहीं। वह अपने औकात को बाज़ारों में आने जाने में ज़ाया करते हैं, जिनकी वजह से मुनकरात में भी मुब्तला होते हैं। इनमें से बाज़ लोग फजूल खेलों में कीमती वक्त को बेदर्दी से ज़ाया करते हैं, या फजूल किस्से कहानियों और कीमतों के उतार चढ़ाव की बेफ़ायदा बहस में ज़ाया करते हैं। इससे मैंने ये समझा कि वक्त की कदर कीमत को पहचान की वक्त की कदर कीमत की पहचान की दौलत अल्लाह ने हर एक को अता नहीं फरमाई, ये तो महज अल्लाह की तौफीक है और बहुत ही कम लोग इसको गनीमत जानते हैं। वमा युलक्का इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये सूरह हामिम सजदा की आयत है कि नहीं सिखाई जाती ये बात मगर बड़ी किस्मत वाले लोगों को। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उम्र के औकात की कदर कीमत पहचानने और इसको गनीमत जानने की तौफीक मुरहमत अत फरमा दे, यानी हम पे रहम करते हुए हमें ही अता फरमा दे। हर सलफ़ सालहीन तदीए वक्त, यानी वक्त के ज़ाय करने टाइम वेस्टिंग से गुरेज करते थे। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ फरमाते हैं, मैं ऐसे लोगों से भी वाकिफ़ हूँ जो एक जुमे से दूसरे जुमे तक अपनी हर बात को शुमार करते, हम एक दिन की नहीं कर पाते, यानी पूरा नज़र में रखते थे क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। तो ये कड़ा मुहासबा बंदे को फिर सीधा कर देता है ना। किसी बुज़ुर्ग के पास लोग जाकर कहने लगे, शायद हमने आपकी मसरूफियत में खलल डाल दिया। फरमाने लगे, सच बता दूँ, मैं कुरान करीम पढ़ रहा था, तुम्हारी वजह से छोड़ दिया। एक बुज़ुर्ग ने हज़रत सिरी सकती के पास आकर देखा कि इनके पास एक जमात बैठी हुई है, कहने लगे तुम बेकारों का फरोदगा बन गए हो, यानी बेकार लोगों की आमाजगा बन गए हो। फिर वो वहाँ से चले और वहाँ नहीं बैठे। अगर आने वाले के साथ नरमी बरती जाए तो वो नशिस्त को तवील करेगा जिससे वक्त ज़ाया होगा। गाइडलाइन मिल रही है आप लोगों को कैसे वक्त बचाना है। हज़रत मारूफ़ करखी के पास लोग अगर देर तक बैठे रहते तो फरमाते, सूरज को चलाने वाला फ़रिश्ता इसको चलाने में कोताही नहीं करता। आप लोगों का कब तक उठने का इरादा है? क्या पता चला कि सूरज चला जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो आपने भी और बैठना है, या फिर रात पूरी मतलब दिन चला ही जाएगा तो जाएंगे। हज़रत इमाम दाऊद ताई रोटी खाने के बजाय सफ़ूफ़ फांकते और फरमाते, रोटी खाने और सफ़ूफ़ फांकने में 50 आयात पढ़ने का फ़र्क है। सफ़ूफ़ फांकना क्या होता है? जैसे नबी सल्लम सत्तू पानी में घोल के पीते थे, देखे पेट भर जाता है। अब हम पहले आटा गूंदें, फिर उसको नरम करें, फिर रोटी पकाएं, फिर खानी किसके साथ है, फिर गरम गरम रोटी चाहिए, फिर अब रोटी के बाद क्या है, फिर मीठा क्या है, फिर चाय क्या है। तो वो कहते हैं कि सफ़ूफ़ फांकने और रोटी खाने में 50 आयतों का फ़र्क है। नहीं समझे कि सफ़ूफ़ फूक लूँ ख़त्म कुरान पढ़ूंगा, उतने वक्त में जितने में सफ़ूफ़ से रोटी बनती है 50 आयतें पढ़ी जाती हैं। उस्मान बिलाकलादी दायमु ज़िक्र बुज़ुर्ग थे। दायमु ज़िक्र कौन होता है? जो हमेशा ही जिक्र करता रहे। फरमाते, इफ्तार के वक्त रोटी खाते वक्त जिक्र छूटने से मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मेरी रूह निकल रही है। बस बुज़ुर्ग अपने शागिर्दों से फरमाते, यहाँ से निकलने के बाद अलहदा अलहदा चलो कि शायद इस तरह कुरान पाक पढ़ते हुए चलो, इकट्ठे जाने की सूरत में गुफ्तगू में वक्त ज़ाया करोगे। ये तो आपको कहा जा रहा है। अमूमन देखिए कि हम आते और जाते रस्तों में भी बातें कर रहे होते हैं, हालांकि वो वक्त इतना कीमती होता है, उसमें आप क्या कुछ तैयार कर पाते हैं। यकीन कीजिए वक्त इतना कीमती है कि इसमें एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया जाए, एक भी लम्हा ज़ाया ना किया जाए। आपका इरशाद ग्रामी है, मन काला सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही गरसत लहू बिहा नखल फिल जन्ना। जो शख्स सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही तक पढ़ ले तो जन्नत में इसके लिए खजूर का एक दरख्त लग जाता है। आप देखिए एक दरख्त लगता है तो हम बातें करके कितने दरख्त ज़ाया करते हैं। ज़रा गौर कीजिए, इंसान गफलत में कितना अजीम व शान सवाब कमाने का मौका गंवा देता है, गोया अय्याम ज़िंदगानी खेत हैं। कहा जाता है एक दाना बीज का बो डालोगे इसको 1,000 गुना करके तुम्हें अता करेंगे। किसी अक्लमंद इंसान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस अजीम व शान मनफियत यानी फ़ायदा देने वाली चीज़ से गफलत बरते या काहली और सुस्ती से काम ले। वक्त को बचाने और कीमती बनाने में सबसे बड़ी मददगार चीज़ यकसुई और गोशा नशीनी। ये भी नोट करें, आज के दौर का ये बहुत बड़ा मसला है कि हम यकसू नहीं, फोकस्ड नहीं है। काम करने बैठे फ़ोन आ गया, कभी वाइबर पे कॉल, कभी व्हाट्सएप पे कॉल, कभी बाहर कोई आ जाता है, कभी कोई मैसेज है, कहीं माली आ गया, कहीं बाहर आ गया, कोई कुछ हो गया। हम लोग बटे हुए लोग हैं। और गोशा नशीनी भी बहुत कहते हैं फ़ायदा मंद होती है। लोगों से मेल मिलाप में कमी और कम खोरी भी है। कम खोरी क्या होती है? कम खाना। इसलिए कि बसियार खोरी, बसियार खोरी क्या होती है? ज़्यादा खाना, ओवर ईटिंग, लंबी नींद और रात को ज़ाया करने का बायस है। ज़ाहिर ज़्यादा खाएंगे तो नींद ज़्यादा आएगी। जो असलाफ की सीरत को देखे और आखरत की जजा व सज़ा पर यकीन करे, इसके सामने वाज़े हो जाएगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है। उलमाए मुतकद्दमीन, मुतकद्दमीन कौन होते हैं? जो पहले गुजर चुके पुराने उलमा। इनकी हिम्मतें बुलंद थी, इनकी सारी ज़िंदगी का निचोड़ और इनकी तसानीफ़ इस पर दाल हैं यानी दलालत करती हैं। हाँ अलबत्ता इनकी अक्सर तसनीफ़ात मिट गईं, इसलिए कि बाद में आने वाले तुलबा की हिम्मतें कमज़ोर हो गईं, इनकी तवील समझ से फ़ायदा ना उठा सके, मुख्तसरात पर काने हो गए। यानी उनकी जो किताबें कई की जिल्दों की थी ना, फिर उसकी मुख्तसर आ गई। जैसे आप देखिए मुख्तसर बुखारी, मुख्तसर मुस्लिम, सियासत, हर चीज़ का मुख्तसर लेते गए और जो उनकी एक डिटेल्ड चीज़ें थी वो छोड़ दी। फिर मामला सिर्फ दरस व तदरीस पर इक्तफा का ही रह गया, जिससे वो सारी तसानीफ़ ज़वाल पज़ीर हो गईं। और बात सच है, बहुत कम लोग हैं जो डिटेल से कुरान तफसीर से करें। कहते हैं 4 साल, 3 साल, हाय इतना लंबा। चले कोई एक ऐसे 1 घंटे में बस हमें एक सारा पढ़ा दें तो वो मुख्तसर ही होगा ना। याद रखिए कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको 1 घंटा दरस सुनना भी बड़ा मुहाल है, कहाँ वो कुरान सुने। तो ये ज़वाल की अलामत है कि फिर इल्म ज़ाया हो जाता है। इससे तलब इल्म में कमाल पैदा करने का वाहिद रास्ता उलमा साबिकीन की किताबों से वाकफियत और मुताला, क्योंकि इससे हिम्मतें बुलंद होंगी, दिल में आबयारी पैदा होगी, मेहनत का शौक़ पैदा होगा। मैंने अपने ज़माने में पहले लोगों की तरह कोई बाहिम्मत और ऐसा साहिब वरा, वरा कहते हैं तकवा का आखिरी दर्जा, बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार बंदा, کوئی ایسا صاحب ورع شخص نہیں پایا جس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا تم پہلے لوگوں کے حال کے ملاحظے کو ضروری سمجھو، ان کی تصانیف کو حرز جان بناؤ یعنی ان کو پڑھو، بلکہ ان کا کثرت سے مطالعہ کرو۔ کسی شاعر نے کہا، میرے پاس آؤ کہ میں اپنی آنکھوں سے گھروں کو دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ میں کانوں سے سن لوں۔ کیا پتہ چلا اس سے، سمجھ آئیے؟ میرے پاس آؤ کہ میں اپنی آنکھوں سے گھروں کو دیکھ لوں، اتنی بات تو سمجھ آ گئی نا، ہو سکتا ہے کہ میں کانوں سے دیکھ لوں، یعنی وہ دیکھنے کا کام بھی کانوں سے کرتے تھے، سننے کا ہی نہیں صرف۔ بہت توجہ دینے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری حالت کیا ہے کہ میں کتابوں کے مطالعے سے کبھی سیرت نہیں ہوا، یعنی میرا دل نہیں بھرا۔ مجھے کوئی ایسی کتاب مل جائے جو پہلے میری دیکھی بھی نہ ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے گویا بیش بہا خزانہ مل گیا۔ میں نے مدرسہ نظامیہ کے کتب خانے میں کتابوں کی فہرست دیکھی جو 6000 کتابوں پر مشتمل تھی، جس میں بڑے بڑے علماء کی تھی، جس میں امام ابو حنیفہ اور حمیدی کی اور محمد فتوح اندلسی کی، اسی طرح عبدالوہاب ابن ناصر ابو محمد کی تصانیف تھی، اور بھی کتابیں تھیں۔ کہتے ہیں میں نے ساری پڑھ ڈالی۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے 20000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد بھی میں کتابوں کی تلاش میں رہتا ہوں، ان ساری کتابوں کو پڑھنے اور ان کی بلند ہمتی، حفاظت دین اور عبادات اور عجیب و غریب علوم کو پڑھنے کے بعد اپنے زمانے کے لوگوں کی ہمتوں کو اپنے سے پست اور کمتر پایا ہے۔ دیکھیے آپ اور میں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں سارا، کیا ہمیں سے موٹیویشن مل رہا؟ ہم تو جلدی سے گناہوں کی بات کر کے فارغ ہو، لیکن وقت ضائع کرنا ہمیں گناہ ہی نہیں لگتا، بیکار باتیں ہمیں گناہ ہی نہیں لگتی۔ تو یہ سارا پڑھ کر کم از کم ہمیں کیا فیل ہو رہا ہے کہ ہم بھی تو اپنا جائزہ لیں، ہم نے کہاں اپنے آپ کو ضائع کیا۔ پھر اسی طرح سے ایک دو اور ان کے بارے میں، جیسے حافظ ابن رجب ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کتاب ہے ان کی ذیل طبقات الحنابلہ، تو اس میں یہ ابن جوزی کے لیے کہتے ہیں، کوئی ایسا فن نہیں جس میں ان کی تصنیف نہ ہو۔ ان کی تصنیف کے متعلق پوچھا گیا تو کہا 340 سے زائد ہیں، ان میں بعض کتابیں 20-20 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ کیسے لکھتے تھے، حد سے لکھتے تھے۔ آج آپ اپنے نوٹس دیکھیں کتنے لکھے ہوں گے، بعض اس پہ بھی بہت سمجھتے ہیں کہ بہت ہے، لیکن یہ اتنی چھوٹی زندگیوں میں اتنا کچھ کیسے کر گئے فوکسڈ سے۔ اسی طرح عبد اللطیف صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن جوزی اپنے وقت میں سے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، روزانہ 4 رجسٹر لکھتے، 4 کاپیاں روز لکھ دیتے تھے، سالانہ 50 سے 60 کتابیں تصنیف فرماتے ہیں۔ ان کے پوتے ابو المظفر فرماتے ہیں، میں نے اپنے دادا جان کو آخری عمر میں ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنی ان انگلیوں سے 2000 کتابیں لکھی ہیں۔ انگلیوں سے کیا، پین قلم پکڑنا پڑتا تھا نا، آج تو ٹپ 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 ٹک ٹک کریں، آپ دیکھیں کیسے کمپیوٹر آپ کے لیے لکھتا ہے۔ اسی طرح ابن الوردی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ابن جوزی کے رجسٹروں کو ان کی عمر کے ایام پر تقسیم کیا تو روزانہ 9 رجسٹر بنے۔ اسی طرح ایک اور ہیں اللقمی، ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کلموں کے برادے کو جمع کیا گیا جن سے ابن جوزی نے حدیث لکھی تو ایک بہت بڑا حصہ جمع ہوا۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد غسل کے پانی کو ان برادوں سے گرم کیا جائے، تو ایسا ہی کیا گیا، اور یہ برادے غسل کے پانی کو گرم کرنے کے لیے نہ صرف کافی ہوئے بلکہ بچ بھی گئے۔ شارپ کرتے ہیں نا پینسل، تو جو اس کی لکڑی کے چھوٹے چھوٹے سرے ہوتے ہیں، اسی میں ان کو پھر پانی گرم کر کے غسل دیا گیا تھا۔ قدر تھی نا، آج تو قدر ہی نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں جتنا آج علم، دین تو ایک سائڈ پہ کر دیں، وہ تو ہیں دھجیاں بکھری ہوئی دین کی، وہ تو ہم نے اپنی مرضی سے ادھر ادھر کے، جو قوم کی علم کی قدر نہیں کرے گی، کتاب کی قدر نہیں کرے گی، وہ دین کی قدر نہیں کرے گی۔ آج کیوں اتنی زیادہ سہولتیں مانگتے ہیں دین میں لوگ، آج کسی سے کوئی بات کریں، سود حلال کرو، یہ صحیح ہے، کچھ نہیں ہوتا، لڑکا لڑکی ہے، ملنے شادی سے پہلے بیٹھ جائے، یعنی موٹی موٹی باتیں دو چار دیکھیے تو لوگ کیوں اس کے اوپر اب جم گئے ہیں، علم سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ اور علم کا وقت کیوں نہیں، کیونکہ وقت کی قدر نہیں، بیکار چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال ان کے بارے میں ایک آخری کوٹیشن جو الاستاد عبد الحمید کی ہے، مؤلفات ابن جوزی کے نام سے اس کتاب میں لکھتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ عراق کی وزیر ثقافت والارشاد نے 1385 میں تباہ کیا تھا، یعنی آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے اس کو پرنٹ کروایا تھا۔ اس میں ان کی 519 کتابیں لکھی ہیں، جن میں بڑی بڑی کتابیں 20 جلدوں پر مشتمل اور چھوٹی کتابیں بھی کئی صفحات پر مشتمل تھیں۔ इसी के मुकदमे में इब्ने तैमिया के हवाले से लिखा है कि इब्ने तैमिया ने अजूबतुल मिस्रिया में लिखा कि इब्ने जोज़ी बहुत ज़्यादा लिखने वाले थे और मुख्तलिफ उलूम में इनकी तसनीफ़ जिनकी तादाद हज़ार से भी ऊपर बढ़ गई है। तो बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सिर अनम इहदिनस्सिरातल्लज़ीन अनमत अलैहिम, कि अल्लाह हमें ऐसे लोगों का रास्ता दिखा जिन पे तेरे इनाम हुए। सच बताएं आज कब्र में ही है ना, खाए हुए खाने पिए हुए खाने सारा कुछ उनकी ज़िंदगी से निकल गया ना, साथ किया गया। आप अपने ऊपर लें, इसको अपने पे लें, मुझे तो किसी की और फिक्र नहीं है, मुझे आपकी फ़िक्र है, क्योंकि आपके नाम के साथ कुरान का नाम लग चुका है। वक्त ज़ाया ना किया करें, बेकार मशगलों में जब हम बैठते हैं उससे दिल का नूर चला जाता है, तलब चली जाती है, रूहानियत चली जाती है, बात का असर ख़त्म हो जाता है। हर जगह हर महफिल में होना कोई लाजमी है क्या? हमारे बगैर कोई खुशी गम नहीं होता। और मैं कहती हूँ अब तो बायकॉट करना ही पड़ेगा आपको भी, हर उस गंदी चीज़ का जहाँ से अल्लाह ने रोका, हर वो हुक्म जो आपने ख़ुद अपनी आंखों से कुरान में पढ़ लिया है। अब क्या आप उस पर बैठे रहेंगे? क्या आप झूठ के गवाह बनेंगे? फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका दिल खुलेगा। अब ये जितनी बातें अभी हुई हैं इसमें से कुछ सवाल कोई बात है तो आप पूछ लें, या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर दें। फ़ायदा हुआ हमें इसको पढ़ने का? क्या फ़ायदा होगा कि हमने भी अपनी ज़िंदगी में वक्त की कदर करनी है, इल्म दोस्त बनना है, किताब के लिए वक्त निकालना है, फोकस्ड होना है, और बेकार खाने पीनों में वक्त ज़ाया नहीं करना। सब कुछ कीजिए हदों में रहकर, और जहाँ दूसरों से मिलने जाने आने की ज़रूरत पड़ती है तो साथ कुछ ऐसे काम ज़रूर रखने हैं कि जिससे अगले को भी एहसास हो। लेकिन अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो लोग बैठ के गीबते हैं तो नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये तो बड़ी जल्दी में। तो आप देखिए सिर्फ़ एक आपकी वजह से ख़ानदान की महफिलों का, दावतों शादियों का माहौल बदल सकता है। ठीक है, ये वाली तो चीज़ अभी तक जो हुई है ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके बारे में पूरी हुई। अब थोड़ा सा आगे किताब को हम शुरू करेंगे किताब के नाते से।